भूमिका पूर्वा और उर्वशी की कथा कई रूपों में मिलती है और उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। राजा पुरुड़वा सोमवंश के आदि पुरुष हुए हैं। उनकी राजधानी प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर में थी। पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को संतान की इच्छा हुई, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से यज्ञ करवाया। श्रद्धा की मनोकामना थी कि वे कन्या की माता बने। मनु चाहते थे कि उन्हें पुत्र प्राप्त हो, किंतु इस यज्ञ से कन्या ही उत्पन्न हुई। पीछे मनु की निराशा से द्रवित होकर वशिष्ठ ने उसे पुत्र बना दिया। मनु के इस पुत्र का नाम सुद्युम्न पड़ा। युवा होने पर सुद्युम्न एक बार आखेट करते हुए किसी अभिशप्त वन में जा निकले और शापवश में युवा नर से युवी नारी बन गए और उनका नाम इला हो गया। इसी इला का प्रेम चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से हुआ, जिसके फलस्वरूप पुरुर्वा की उत्पत्ति हुई। इसी कारण पुरुर्वा को एल भी कहते हैं और उनसे चलने वाले वंश का नाम चंद्रवंश है। उर्वशी की उत्पत्ति के विषय में दो अनुमान हैं। एक तो यह है कि जब अमृत मंथन के समय समुद्र में अप्सराओं का जन्म हुआ, तब उर्वशी भी उन्हीं के साथ जन्मी थी। दूसरा यह कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के निमित्त जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी, तब ऋषि ने अपने उरु को ठोक कर उसमें से एक ऐसी नारी उत्पन्न कर दी जो उन सभी अप्सराओं से अधिक रूपवती थी। यही नारी उर्वशी हुई और उर्वशी नाम इसका इसलिए पड़ा कि वह उर से जन्मी थी। भागीरथ की जांघ पर बैठने के कारण गंगा का भी नाम उर्वशी है। देवी भागवत के अनुसार बद्री धाम में जो देवी पीठ है उसे उर्वशी तीर्थ कहते हैं। नर नारायण की तपस्या भूमि बद्री धाम में ही थी। संभव है उर्वशी तीर्थ उसी का स्मारक हो। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस सूक्त से इतना ही विदित होता है कि उर्वशी पुरुर्वा को छोड़कर चली गई थी और विरहोन्मत्त पुरुर्वा उसके संधान में थे। एक दिन उर्वशी जब उन्हें मिली, उसने यह तो बताया कि वह गर्भवती है, किंतु लौटकर फिर उनके साथ रहना उसने अस्वीकार कर दिया। पीछे चलकर शतपथ ब्राह्मण में और उसके आधार पर पुराणों में इस कथा का जो पल्लवन हुआ उसमें कहा गया है कि उर्वशी के गर्भ से पुरुर्वा के 6 पुत्र हुए थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम आयु था। कहते हैं निरुक्त के अनुसार आयु का अर्थ भी मनुष्य होता है। डॉक्टर फतेह सिंह। इस दृष्टि से मनु और ईडा तथा पुरुर्वा और उर्वशी ये दोनों ही कथाएं एक ही विषय को व्यंजित करती हैं। सृष्टि विकास की जिस प्रक्रिया के कर्तव्य पक्ष का प्रतीक मनु और ईडा का आख्यान है, उसी प्रक्रिया का भावना पक्ष पुरुर्वा और उर्वशी की कथा में कहा गया है। सर विलियम विल्सन ने अनुमान लगाया था कि पुरुर्वा और उर्वशी की कथा अन्योक्ति परक है। इस कथा का वास्तविक नायक सूर्य और नायिका उषा है। इन दोनों का मिलन कुछ ही काल के लिए होता है, बाद में वे प्रतिदिन बिछुड़ जाते हैं। किंतु इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं रहा। मेरी दृष्टि में पुरुर्वा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। उर्वशी शब्द का कोशगत अर्थ होगा उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा या कामना, और पुरुर्वा शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का रव करे, नाना ध्वनियों से आक्रांत हो। उर्वशी चक्षु रसना घ्राण त्वक तथा श्रोत की कामनाओं का प्रतीक है। पुरुर्वा रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य। पुरुर्वा द्वंद्व में है, क्योंकि द्वंद्व में रहना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य सुख की कामना भी करता है और उसे आगे निकलने का प्रयास भी। नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती, नर नारी के आलिंगन में संतोष मानता है। कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी में अलग रहने नहीं देती, और जब वे मिल जाते हैं तब भी उनके भीतर किसी ऐसे तृषा का संचार करती है जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर अनुपलब्ध है। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते उछालते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है। जब दैहिक चेतना से परे उसे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निष्पन्द हो जाता है। और पुरुष के भीतर भी एक और पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। परिरंभ पाश में बने हुए प्रेमी परस्पर एक दूसरे का अतिक्रमण करके एक ऐसे लोक में पहुंचना चाहते हैं जो किरणोज्ज्वल और वायवी है। इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। देश और काल की सीमा से बाहर निकलने का एक मार्ग योग है, किंतु उसकी दूसरी राह नर नारी प्रेम के भीतर से भी निकलती है। मनुष्य का यह अनुमान अत्यंत प्राचीन है। तंत्र साधना के मूल में ऐसा कोई न कोई विश्वास रहा होगा। सहज मार्गियों के मन में ऐसी कोई न कोई भावना काम करती रही होगी। अभिनव मनोविज्ञान के भीतर भी ऐसी कोई न कोई प्रेरणा क्रियाशील है। काम सुख की इन्हीं निराकार झंकृतियों का आख्यान मनोविज्ञान उदात्तीकरण की भाषा में करता है। प्रेम की एक उदात्तीकृत स्थिति वह भी है जो समाधि से मिलती जुलती है, जिसके व्यक्तित्व का देवोपम विकास हुआ है, जिसके स्नायविक तार चेतन और सजीव है, जिसका मन स्वभाव से ऊर्ध्वगामी और उड्डयनशील है। उसे काम के स्पर्श मात्र से इस समाधि का बोध होता है। मनुष्य के इस द्वंद का साकार से ऊपर उठकर निराकार तक जाने की इस अकुलता तथा इंद्रियता से निकलकर इंद्रिय जगत में खुलने की इस उमंग का प्रतीक पुरुवा है। किंतु उर्वशी द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त है। देवियों में द्वंद्व नहीं होता। वित्रिकाल अनुद्विग्न निर्मल और निष्पाप होती है। द्वंद्वों की कुछ थोड़ी अनुभूति उसे तब होती है जब वह माता अथवा पूर्ण मानवी बन जाती है, जब मिट्टी का रस उसे पूर्ण रूप से अभिषिक्त कर देता है। भावना और तर्क, हृदय और मस्तिष्क, कला और विज्ञान तथा निरुद्देश्य आनंद और शोद्देश्य साधना, मानवीय गुणों को ये जोड़े नवीन मनुष्य को भी दिखाई देते हैं और वे प्राचीन मानव को भी दिखाई पड़े थे। मनु और इड़ा का आख्यान तर्क, मस्तिष्क विज्ञान और जीवन के शोद्देश्य साधना का आख्यान है। पुरुषार्थ के अर्थ पक्ष को महत्व देता है, किंतु पुरुर्वा उर्वशी का आख्यान भावना, हृदय, कला और निरुद्देश आनंद की महिमा का आख्यान है। वह पुरुषार्थ के काम पक्ष का महात्म्य है बताता है। जैसे पुरुषार्थ के तीन अंग कहे गए, वैसे ही मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व के धरातल भी तीन है। मनुष्य के सारे व्यक्तित्व समग्र जीवन का आधार उसकी जैव भावनाओं का धरातल है। यह वह धरातल है जिसमें मनुष्य और पशुओं में भेद नहीं है, और यही धरातल सबसे प्रबल और सबसे प्राचीन भी है। मनुष्य को पशुओं से भिन्न करने वाले बुद्धि और आत्मा के दो धरातल बाद को उत्पन्न हुए। वैसे आत्मा तो पशुओं में भी है, किंतु सत्सत विवेक की शक्ति जो मानवता का प्रधान गुण है पशुओं में नहीं होती। किंतु मनुष्य ने जिस परिमाण में बुद्धि अर्जित की उसी परिमाण में उसने सहज प्रवृत्ति की शक्ति को खो दिया। तब भी बुद्धि थोड़ी पशुओं में भी है और सहज प्रवृत्ति कभी कभी मनुष्य में भी झलक मारती है। भेद यह है कि पशु का सारा जीवन सहज प्रवृत्ति से चलता है, केवल उसके किनारे किनारे बुद्धि की हल्की झालर विद्यमान है, और मनुष्य के सारे जीवन का आधार बुद्धि है। सहज प्रवृत्ति कभी कभी ही बिजली की तरह उसमें कौंध जाती है। तब भी मनुष्य का सर्वोत्तम काव्य, सर्वोच्च दर्शन और विज्ञान के अशाश्वत आविष्कार, ये सब के सब संबुद्धि से संकेतित होते हैं, जो बहुत कुछ सहज प्रवृत्ति के ही समान है। अर्थ और काम, ये जय धरातल के पुरुषार्थ है, किंतु धर्म का जन्म आत्मा और के धरातल पर होता है। बुद्धि इन दोनों धरातलों की सेविका और सहायक है, किंतु अर्थ की सेवा वह जिस सहजता से करती है उसी सहजता से वह धर्म और काम की सेवा नहीं कर सकती। अर्थ के उपकरण भोजन, छाजन, मोटर, महल, सेना, समाज और मनुष्य के सारे भौतिक अभियान है जो बुद्धि के वृत्ति में पड़ते हैं, किंतु काम के अंग कला, सुरुचि, सौंदर्य बोध और प्रेम है जो मुख्यतः संबुद्धि के सांकेतिक होते हैं। उसी प्रकार बुद्धि धर्म को भी सिद्ध नहीं करती। धर्म बराबर संबुद्धि से प्रेरणा पाता है। धर्म का जन्म आत्मा के धरातल पर होता है, किंतु सार्थकता उसकी तब है जब वह जैव धरातल पर आकर हमारे आचरणों को प्रभावित करे। कला, सुरुचि, सौंदर्य बोध और प्रेम, इनका जन्म जैव धरातल पर होता है, किंतु सार्थकता उनकी तब सिद्ध होती है जब वे ऊपर उठकर आत्मा के धरातल को स्पर्श करते हैं। साहित्य के नौ मूल भावों में से रति, क्रोध, भय और घृणा, ये मूल भाव भैंस में भी होते हैं, किंतु पशुओं में जो भाव अनगढ़ और कुरूप हैं, मनुष्य में आकर वे अनेक रंग रूप में बदल कर निस्सीम हो गए हैं, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि और कल्पना की शक्ति है जो पशुओं में नहीं है। पशुओं में जो प्रेरणा ऋतु धर्म की एक आकार है, मनुष्यों में ऋतु धर्म का बंधन नहीं मानती। न वह प्रजा सृष्टि की सीमा पर समाप्त होती है। काम शक्ति पशु जगत में आवश्यकता और उपयोग की सीमा में है। मनुष्य में आकर वह ऐसे आनंद का कारण बन गई है जो निष्प्रयोजन, निस्सीम और निरुद्देश्य, और नित्य नए नए पुलकों की रचना करती है, नई नई कल्पनाओं को जन्म देती है और मनुष्य को नित्य और नवीन स्फुरणों में अनुप्राणित रखती है। यह सच है कि काम के क्षेत्र में पशुओं को जो स्वाधीनता प्राप्त है वह मनुष्यों को नहीं है, किंतु कामजन्य स्फुरणों, प्रेरणाओं और सुखों का जो अनंत व्यापी प्रसार मनुष्य में है वह कल्पनाहीन जंतुओं में नहीं हो सकता। और मनुष्य में जो भी लोग पशुता से जितनी दूर हैं वे काम के सूक्ष्म सुखों का आस्वाद इतना ही अधिक जानते हैं। कामजन प्रेरणाओं की व्याप्तियाँ सभ्यता और संस्कृति के भीतर बहुत दूर तक पहुँची हैं। यदि कोई युवक किसी युवती की प्रशंसा की आँखों से देख ले तो दूसरे ही दिन उसे उस युवती के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसे पोशाक और प्रसाधन में नवीनता की आवश्यकता अनुभूत होने लगती है। उसके बोलने चलने और देखने में एक नई भंगिमा उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रकार जब कोई नारी प्रशंसा भरी दृष्टि से किसी पुरुष को देख लेती है तब अनगढ़ से अनगढ़ पुरुष के भीतर में कोई कल्पक जाग उठता है। कोई कविता उसे गुगाने लगती है। सौंदर्य का कोई दृश्य जगकर उसे आईने के पास ले जाती है। काम की ये जो निराकार झंकृतियाँ हैं वही उदात्तीकरण के सूक्ष्म सोपान है। त्वचाएँ स्पर्श के द्वारा सुदंता का जो परिचय प्राप्त होता है वह अधूरा और अपूर्ण होता है। पूर्णता पर वह तब पहुँचता है जब हम सौंदर्य के निदेश ध्यासन अथवा समाधि में होते हैं। कला साहित्य और विशिष्ट काव्य के भौतिक सौंदर्य की महिमा अखंड है। फिर भी श्रेष्ठ कविता बराबर भौतिक के परे भौतिकोत्तर सौंदर्य का संकेत देती है। फिजिकल को लांघकर मेटाफिजिकल हो जाती है। प्रेम में भी भूत से ऊपर उठकर भूतरोत्तर होने की शक्ति है। रूप के भीतर डूबकर अरूप का संधान करने की प्रेरणा होती है। अपने स्थूल से स्थूल रूप में भी प्रेम एक मानव का दूसरे मानव के साथ एकाकार होने का सबसे सहज सबसे स्वाभाविक मार्ग है। किंतु विकसित और उदात्त हो जाने पर तो वह मनुष्य को बहुत कुछ ही शीतलता प्रदान करता है जो धर्म का अवदान है। धर्मादर्थ हो अर्थतः काम कामार्धर्म फलोदय पद्म पुराण। धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की प्राप्ति होती है किंतु काम से फिर हमें धर्म की ही फल प्राप्त होते हैं। जीवन में मन सूक्ष्म आनंद और निरुद्देश सुख के जितने भी सोते हैं वे कहीं ना कहीं काम के पर्वत से फूटते हैं। जिसका काम कुंठित उपेक्षित अथवा अवरुद्ध है वह आनंद के अनेक सूक्ष्म रूपों से वंचित रह जाता है। यहीन केवल वही नहीं है जिसमें धर्म और काम को छोड़कर केवल अर्थ को पकड़ा है। न्यायतः उकठा काट तो उस साधक को भी कहना चाहिए जो धर्म सिद्धि के प्रयास में अर्थ और काम दोनों से युद्ध कर रहा है। धर्मार्थ कामम सामवेव सेव्यम यह एक सेवी स नरो जघन्य। पूर्वार ऋषि का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर नहीं रुकता। वह शरीर से जन्म लेकर मन और प्राण के गहन गुह्य लोकों में प्रवेश करता है। रस के भौतिक आधार से उठकर रहस्य और आत्मा के अंतरिक्ष में विचरण करता है। पुरुर्वा के भीतर देवत्व की तृष्णा है, इसलिए मर्त्य लोक के नाना सुखों में व्याकुल और विषण है। उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी वह सहज निश्चिंत भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। पुरुर्वा की वेदना समग्र मानव जाति की चिरंतन वेदना से ध्वनित है, किंतु मानवता की वह वेदना उत्पन्न कहाँ से होती? मानव मन का यह दुसाध्य संघर्ष आता है कहाँ से? आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। मनुष्य जब पशुओं से अलग होने लगा यह वेदना तभी से उसके साथ हो गई। मानवता ही मनुष्य की वेदना का उत्तम नाम है। मनुष्य ने देवताओं की जो कल्पना कर रखी है उसकी गत से अपने आप को नापने में वो असमर्थ है। यदि मनुष्य अपनी गर्दन तान कर मस्तक से नक्षत्रों को छूने का प्रयास करे तो उसके पाँव जमीन से उखड़ जाते हैं। वह वायु में निसहाय उड़ने वाला पत्ता बन जाता है। और यदि वह पांव जमाकर धरती पर खड़ा रहे तो अपने मस्तक से वह नक्षत्र तो क्या समान वृक्ष की मौली को भी नहीं छू सकता। मनुष्य की कल्पना का देवता वह है जो जल में उतरने पर भी जल में नहीं भीगता। उसकी गर्दन समुद्र से ऊंची लहरों से भी हाथ भर ऊंची दिखाई देती है, किंतु मनुष्य का भाज ऐसा नहीं है। वह तरंगों से लड़ते लड़ते भी उनसे भींग जाता और बहुधा लहरें उसे बहाकर अवघाट घाट में फेंक देती हैं। भंवर का जाल बनाकर उसे नीची पाताल में गाड़ देती है। तब भी संघर्ष करना मनुष्य का स्वभाव है। वह जल के समान सूर्य की किरणों पर चढ़कर आकाश पहुंचता है और बादलों के साथ पृथ्वी पर लौट आता है, और सूर्य की किरणें एक बार फिर उसे आकाश पर ले जाती है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घटित इस निरंतर आवागमन से मनुष्य का निस्तार कभी होगा या नहीं इसका विश्वसनीय ज्ञान मनुष्य को छोड़कर चला गया है। इसलिए मैं इस विषय में मौन हूँ कि पुनर्वास जब संन्यास लेकर चले गए तब उनका क्या हुआ। एक ओर देवत की ऊंची ऊंची कल्पनाएं, दूसरी ओर उफनाते हुए रक्त की अप्रत्यहत पुकार और पग पग पर घेरने वाले ठोस वास्तविक अवैध चट्टाने जो हुक्म नहीं मानती, जो पिघलना नहीं जानती। आदमी हवा और पत्थर के दो छोरों के बीच झटकी खाता है और झटका खाकर कभी उस ओर मुड़ जाता है, कभी प्रेम कभी संन्यास, और संन्यास प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, न प्रेम संन्यास को, क्योंकि प्रेम प्रकृति और परमेश्वर संन्यास है। अब मनुष्य को सिखलाया गया है कि एक ही व्यक्ति परमेश्वर प्रकृति दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्वशि पूछती है, क्या ईश्वर की प्रकृति दो है? क्या ईश्वर प्रकृति का प्रतिबल है, किसका प्रतियोगी है? क्या दोनों एक साथ नहीं चल सकते? क्या प्रकृति ईश्वर का पुत्र बनकर उत्पन्न हुई है, अथवा क्या ईश्वर ही प्रकृति से रुष्ट है? प्रकृति और परमेश्वर की एकता की एक अनुभूति संन्यास और प्रेम के बीच संतुलन की एक झांकी महर्षि च्यवन के चरित्र में झलक मारती है। जो नदी पुरुर्वा के भीतर बेचैन होकर गरज रही है, वही च्यवन में आकर स्वच्छ सुस्थिर शीतल और मौन है। संन्यास से समागत प्रेम से और प्रेम से समागत संन्यास से बचना जितना कठिन है, संन्यास और प्रेम के बीच संतुलन बिठाना कदाचित उससे भी कठिन कार्य है। मनोविज्ञान जिस साधना का संकेत देने लगा है, वह वैराग्य नहीं रागों से मैत्री का संकेत है। वह निषेध नहीं स्वीकृति और समन्वय का संकेत है। वह संघर्ष नहीं सहज स्वच्छ प्रकृति जीवन की साधना है। देवता वह नहीं जो सब कुछ को पीर देकर सबसे भाग रहा है। देवता वह है जो सारी आसक्तियों के बीच अनासक्त है, सारे स्प्रियाओं को भोगते हुए भी निष्प्रिय और निर्लिप्त है। फिर वही बात, पानी पर चलो किंतु पानी का दाग नहीं लगे, किंतु पानी पर चलकर भी पानी के दाग से बचता कौन है? क्या वह जो अश्नरी और सुकन्या के साथ है, अथवा वह भी जो उर्वशी के प्रेम में है? क्या वह जो च्यवन की पत्नी है, अथवा वह भी जो पुरुर्वा की गोद में है? प्रश्नों के उत्तर रोगों के समाधान मनुष्य के नेता दिया करते हैं। कविता की भूमि केवल दर्द को जानती है, केवल बेचैनी को जानती है, केवल वासना की लहर और रुधिर के उत्ताप को पहचानती है। और वेदना की भूमि चूंकि पुरुर्वा के संन्यास पर समाप्त नहीं हुई, इसलिए औषणरी की व्यथा में कविता को वहां समाप्त होने नहीं दिया। किंतु नेता किसी एक बात एक जगह मैं भी कह गया, जब देवी सुकन्या सोचती है कि नरदारी के बीच संतुलन कैसे लाया जाए, तब उनके मुंह से यह बात निकल पड़ती है कि यह सृष्टि वास्तव में पुरुष की रचना है, इसीलिए रचयिता ने पुरुषों के साथ पक्षपात किया, उन्हें स्वत्व हरण की प्रवृत्तियों से पूर्ण कर दिया। किंतु पुरुषों की रचना यदि नारियां करने लगे तो पुरुष की कठोरता जाती रहेगी और वह अधिक भावप्रवण और मृदुलता से युक्त हो जाएगा। इस पर आयु यह दावा करता है कि मैं ही तो वह पुरुष हूँ जिसका निर्माण नारियों ने किया है। आयु का कहना ठीक था और वह प्रसिद्ध राजा भी हुआ जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, किंतु उल्लेख इस बात का भी कि युवक राजा सुश्रवा ने आयु को जीत कर उसे अपने अधीन कर लिया था। फिर वही बात, पुरुष की रचना पुरुष करे तो वह त्रासक होता है और पुरुष की रचना नारी करे तो लड़ाई में वह हार जाता है। समस्या युद्ध की हो अथवा प्रेम की, कठिनाइयां सर्वत्र समान है। एकांत में कोई नहीं मानता कि बखनखा पहनना अच्छा काम है, किंतु बाहर जाते हुए हर कोई उसे पहनना चाहता है क्योंकि और लोग बखनखे पहने हुए हैं। युक्ति तो यही कहती है कि नकाब पहनकर असली चेहरे को छिपा लेने से पुण्य नहीं बढ़ता होगा, फिर भी हर आदमी नकाब लगाता है क्योंकि नकाब पहने बिना घर से निकलने की समाज की ओर से मनाही है। किंतु उस प्रेरणा पर तो मैंने कुछ कहा ही नहीं जिसे 8 वर्ष तक अग्रसित रखकर यह काव्य मुझसे लिखवाया गया। अकथनीय विषय, शायद अपने से अलग करके मैं इसे देख नहीं सकता, शायद वह अलिखित रह गई, शायद वह पुस्तक में व्याप्त है। रामधारी सिंह दिनकर, पटना, 23 जून 1961।